प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 31 मई 2016 है, इस महीने का आखिरी दिन, और आज के इस afias.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी अपने प्रिय श्रोताओं का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज मेरे लिए एक विशेष बात यह है कि मुझे छह अपने नौजवान साथियों का को मुबारकबाद बधाई देने का अवसर मिल रहा है। आप सबकी तरफ से भी बधाइयां, एकेडमी की पूरी टीम की ओर से बधाइयां, मैडम की ओर से और मेरी ओर से भी इन छह साथियों को बधाइयां। और मजेदार बात यह है कि ये छह के छह साथी वे हैं जिन्होंने अभी उत्तर प्रदेश के पीएससी के एग्जाम में मेन क्वालिफाई किया है। इन फ्रेंड्स के नाम मुझे ईमेल के जरिए मिले हैं, उन्होंने मुझे सूचित किया है। तो दोस्तों, इनके नाम हैं विशाल गुप्ता जो हमारे फोर्थ बैच के स्टूडेंट रहे हैं, विभा मिश्रा गोंग जो हमारी थर्ड बैच की स्टूडेंट रही हैं, अतुल कुमार शर्मा जो बदायूं से हैं, ये हमारे फोर्थ बैच के स्टूडेंट रहे हैं। फिर एक नाम है दोस्तों अयोध्या प्रसाद जो बाराबंकी से हैं, और इन्होंने लिखा कुल इतना ही है कि सर आपके डेली ऑडियो गाइडेंस ने, प्रेस क्लिपिंग्स ने और स्पेशल ऑडियो गाइडेंस को मैं इस सफलता का श्रेय देता हूं। चूंकि इन्होंने स्पेशल ऑडियो गाइडेंस की चर्चा की है, इसलिए मुझे लगता है कि हो सकता है कि अयोध्या प्रसाद भी हमारी एकेडमी के स्टूडेंट रहे हों, लेकिन चूंकि इन्होंने उल्लेख इस बात का नहीं किया है कि वो किस बैच के स्टूडेंट रहे हैं, तो फिलहाल मैं कोई चांस नहीं ले सकता कि हमारे एकेडमी के स्टूडेंट रहे हैं या नहीं रहे हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस डेली ऑडियो का की तो भूमिका उनकी सफलता में रही ही है। तो अयोध्या प्रसाद बाराबंकी से, राहुल उपाध्याय जो इलाहाबाद से हैं, और ए पी पांडे, उन्होंने भी डेली ऑडियो गाइडेंस को बहुत बड़ा श्रेय अपनी सफलता का दिया है। मित्रों, मेरे पास जो अतुल कुमार शर्मा हैं, जो मैंने अभी जिनका नाम लिया, उनका मेल मुझे मिला है जो बदायूं से हैं और ये हमारे स्टूडेंट भी रहे हैं और फोर्थ बैच के स्टूडेंट रहे हैं। उन सभी के सफल होने वाले स्टूडेंट्स के बिहाफ पर मैं अतुल कुमार शर्मा का मेल आप लोगों को पढ़कर सुनाना चाहूंगा। उनका मेल है कि गुरुजी चरण स्पर्श। मैं जब गुरुजी शब्द सुनता हूं तो अंदर से मुझे कुछ होने लगता है, रोमांच सा अनुभव होता है कि चलिए, मतलब लिबरलाइजेशन और अंग्रेजी मीडियम और पता नहीं सो कॉल्ड आधुनिकीकरण, पोस्ट मॉडर्नाइजेशन के दौर में अल्टीमेटली कम से कम गुरुजी शब्द कहीं कुछ क्षेत्रों में अभी भी बचा हुआ है। अदरवाइज तो सर शब्द बहुत ही कॉमन हो गया। सच पूछे तो मेरे जैसा व्यक्ति भी जो वास्तव में अपने गुरु को गुरु ही मानता है, जब संबोधन की बात आती है, पत्र लिखने की बात आती है, तो सर ही संबोधन से के लिए निकलता है और लिखने में भी सर के अल्फाज ही पेपर्स पर उतरते हैं। तो अतुल शर्मा के शब्द हैं, गुरुजी चरण स्पर्श। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आप और आपके परिवारगण सभी कुशल मंगल हों। गुरुजी, आपकी 15 दिवस की क्लास करने के बाद मेरे व्यक्तित्व में बहुत से परिवर्तन हुए हैं जिन्हें मैं अच्छे से महसूस कर रहा हूं। आपके इस व्यक्तित्व विकास योगदान के कारण मैंने एक छोटी सी सफलता उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2016 में सफलता प्राप्त की है। इस सफलता में मैं आपके मार्गदर्शन का महत्वपूर्ण योगदान है। मैं अपनी यह सफलता गुरुजी आपके चरणों में अर्पित करता हूं। मैं अतुल कुमार शर्मा बदायूं उत्तर प्रदेश से आपके फोर्थ बैच का स्टूडेंट रहा हूं। मित्रों, ये मैं मान करके चलता हूं कि जो और भी रिमेनिंग जो 5 स्टूडेंट्स हैं उन सबका प्रतिनिधित्व कर रहा है। दोस्तों, जैसा कि कल मैंने कहा कि अगर मैं ईमानदारी से ही कहूं तो मतलब मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं होता है फ्रेंड्स कि अगर कोई नियमित रूप से इस डेली ऑडियो को सुन रहा है, जो प्रेस क्लिपिंग्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं उनका ठीक तरीके से अध्ययन कर रहा है, उस पर थोड़ा सा विश्वास करके उनसे अपने नोट्स बना रहा है, चीजों को ध्यान में रख रहा है, नो डाउट को जो लाइफ की जो लाइफ मैनेजमेंट वाला पोर्शन है उस पर थोड़ा सा ध्यान दे रहा है, उसको अपने आचरण में उतार रहा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि ये जो डेली ऑडियो गाइडेंस है आपको सफलता के काफी करीब पहुंचा सकता है। देखिए, ये तो सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकता है, आपके बिहाफ पर चल नहीं सकता, चलना तो आपको ही पड़ेगा। कल मैं टीना डॉबी का एक ऑडियो सुन रहा था और उसमें उन्होंने एक बात कही है कि अब किताबें ज्यादा काम की नहीं रह गई, मैगजीन ज्यादा काम की नहीं रह गई, और उन्होंने कहा कि 75% जो आपकी तैयारी होती है वो करंट अफेयर्स से होती है, जनरल स्टडीज से होती है। उन्होंने 75% की बात कही, मुझे तो कभी कभी लगता है कि कहीं ये 75% से भी ज्यादा है, लेकिन चलिए अगर हम 75% भी मानते हैं तो यहां दो बातें हैं फ्रेंड्स। पहली बात तो यह कि यह डेली ऑडियो गाइडेंस आपको वो 75% प्रोवाइड कर रहा है। दूसरी बात यह कि ये जो 75% है ये आपके पूरे प्रिपरेशन का सबसे चैलेंजिंग पार्ट है। देखिए, जो रिमेनिंग 25% है जो आप किताबों से तैयार कर सकते हैं, नोट्स से तैयार कर सकते हैं, उसमें मैगजीन की भी कुछ भूमिका हो सकती है, वो तो लिखित फॉर्म में है और वो हर जगह अवेलेबल है और उनकी तैयारी के बारे में आप काफी कुछ जानते भी हैं, लेकिन जो करंट अफेयर है वो इस मायने में चैलेंजिंग है कि क्या आपके लिए उसमें इंपॉर्टेंट है। डेली इतने सारे अखबार हैं, इतनी न्यूज आ रही हैं, उनमें से कौन सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा मिडिल लेवल का है, यानी कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन बिल्कुल सामान्य रूप में इंपॉर्टेंट है, और फिर कोई कौन सा ऐसा है जो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट, जिन्हें आप छोड़ दें, कचरा समझ करके छोड़ दें। हो सकता है कि कभी कभी कचरे में भी कोई मूल्यवान चीज मिल जाती है, लेकिन उस मूल्यवान चीज के भरोसे हम कचरे को तो इकट्ठा करके नहीं रख सकते। तो ये जो छांटने की जो क्षमता है वो कम से कम ये डेली ऑडियो गाइडेंस आपको प्रोवाइड करता है, छांटने की क्षमता भी प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ छांट करके आपके अच्छी तस्तरी में जमा करके वो चीज भी देता है। दूसरी चीज है कि केवल चीज ही नहीं देता है कि ये इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये बताता है कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है और इसके कौन कौन से एंगल हैं जो एग्जामिनेशन की दृष्टि से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो मुझे लगता है मित्रों कि अगर 75% जो टोटल प्रिपरेशन का जनरल स्टडीज का हिस्सा है, करंट अफेयर्स का हिस्सा है, अगर ये डेली ऑडियो वो आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो मुझे लगता है कि यदि आप इससे जुड़े हुए हैं तो डेफिनेटली इसकी भूमिका आपकी सफलता में तो कुछ न कुछ है ही। तो एक बार दोस्तों मैं फिर से विशाल गुप्ता, विभा मिश्रा, अतुल कुमार शर्मा, एपी पांडे, राहुल उपाध्याय और अयोध्या प्रसाद को आप सब अपने प्रिय श्रोताओं की ओर से, एकेडमी की पूरी टीम की ओर से, मैडम डॉक्टर प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, और हम सब आपके बहुत ही बेहतर सफलता के लिए शुभकामनाएं भी प्रेषित करते हैं और साथ ही ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं कि वह आपको सफल बनाए। मित्रों, एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगा, वो ये कि ये जो 15 डेज की क्लासेस होती हैं, मुझे मतलब व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि डेफिनेटली एक गेम चेंजिंग जैसा है। अब मुझे बहुत से आप लोगों के मेल्स मिलने लगे हैं, जिनके लिखने वालों के मैं केवल नाम का उल्लेख कर देता हूं, उनके मेल पढ़ करके आपको नहीं सुनाता, क्योंकि मैं समझता हूं कि इतना तो आप विश्वास कर ही लेंगे, क्योंकि डेली मेरे पास अब कई कई मेल आने लगे हैं जो 15 दिन की क्लासेस के बाद क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं उसकी चर्चा करते हैं। कुछ कहते हैं कि अब न्यूज समझ में आने लगी है, कुछ कहते हैं अब न्यूज़पेपर पढ़ने में मजा आने लगा है, कुछ कह रहे हैं कि एनालिटिकल पावर बहुत डेवलप हो गया है, कुछ कह रहे हैं कि अब हमारे सोचने समझने का तरीका बदल गया है, पर्सनालिटी बिल्कुल डिफरेंट हो गई है, कोई कह रहा है कि अब उसे अपने ही ग्रुप में एक अलग पहचान मिलने लगी है, कोई कहता है कि परिवार वाले अब उसे पसंद करने लगते हैं। इस तरह से सबके अपने अपने अनुभव की अपनी अपनी कहानियां हैं जो ईमेल के जरिए वो मेरे साथ शेयर करते हैं। फ्रेंड्स, निश्चित रूप से उनकी इन कहानियों को सुनकर मेरी थोड़ी सी आंखें गीली भी हो जाती हैं, शरीर के रोएं थोड़े से खड़े भी हो जाते हैं और मैं आप सबके इस तरह की प्रतिक्रियाओं को अपने लिए एक तरह से पुरस्कार स्वरूप माथे पर लगाता हूं। मैं इन सबको अपना पुरस्कार मानता हूं, आप लोगों के द्वारा मुझे दिया गया नॉट लेस देन नोबेल प्राइज मानता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपके जीवन में थोड़ा सा भी सकारात्मक परिवर्तन लाने में ये 15 दिन की क्लासेस योगदान दे सकती हैं, ये डेली ऑडियो गाइडेंस योगदान कर सकती है, तो शायद समय से पहले 8 साल पहले अपनी नौकरी को छोड़ देना मेरा सार्थक हो गया, क्योंकि जब मैंने नौकरी छोड़ी थी तो मुझे नहीं पता था कि मैं इस तरीके से कोई आप लोगों के हित में कुछ काम कर सकूंगा जिसका इतना प्यारा अच्छा और संतोषजनक रिस्पांस मुझे मिलेगा। तो मित्रों, इसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत बधाई, आप सबके प्रति बहुत बहुत आभार। और जब इस तरह के एग्जैक्ट जब सफलता की सूचनाएं आपको मिलती हैं तो स्वाभाविक रूप से मन का गदगद होना बिल्कुल प्राकृतिक अवस्था ही है। तो एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, अब मैं लाइफ मैनेजमेंट वाले पार्ट पर आ रहा हूं, जो हम निगेटिविटी की बात कर रहे थे। चूंकि वक्त बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं है तो मैं 2-3 चीजें आपसे आज चर्चा करना चाहूंगा। फ्रेंड्स, अब मैं इस बात पर आता हूं कि जिसे हम निगेटिविटी समझते हैं वो कितना निगेटिव होता है और कितना पॉजिटिव होता है। इनफैक्ट वास्तव में पॉजिटिव और निगेटिव है क्या? क्या निगेटिव भी, निगेटिव पूरी तरह से झूठ होता है? निगेटिव पूरी तरह से गलत होता है? हमें निगेटिविटी से पूरी तरह से बचना ही चाहिए, उसे इग्नोर कर देना चाहिए, क्या है? दोस्तों, यहां आपको एक बात स्पेशली ध्यान में रखनी होगी, जो मैं जोर देकर के कह रहा हूं, वो ये कि याद रखिए कि निगेटिविटी में भी हो सकता है कि सत्यता का अंश हो। अगर वह सत्य है तो मानकर चलिए कि वो निगेटिव नहीं है, बावजूद इसके कि वो जो वाक्य है या वाक्य का जो अर्थ है या टोटल उसका जो भाव है वह निगेटिव ही है, वो निगेटिव है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक स्टूडेंट आता है, मैं देख रहा हूं कि जिसका लेवल ऑफ नॉलेज बहुत पुअर है, बेहद पुअर है, जिसके पास कोई एनालिटिकल पावर नहीं है, जिसके पास कोई भाषा ही नहीं है, और मैं देख रहा हूं कि नहीं, ये आईएएस सिविल सर्विस नहीं कर सकता, सिविल सर्विस के लायक नहीं है, हाँ दूसरे एग्जामिनेशन उसकी योग्य मैं उसे बताता हूं। और जब वो जोर देता है तो मैं उसे कहता हूं कि नहीं देखो, तुम सिविल सर्विस के लायक नहीं हो। अब वह इसे निगेटिव मान रहा है, मेरे लिए निगेटिव सेंटेंस कहा गया है, मेरे चारों तरफ निगेटिविटी का एक वातावरण बना दिया गया है, मुझे डीमोरलाइज कर दिया गया है। वो इसे इस रूप में ले और फिर उसे एक निगेटिविटी का नाम दे दे, तो आप बताइए कि ये निगेटिविटी है या सत्य है? ये आपके ऊपर, आपको सोचना पड़ेगा कि निगेटिव का मतलब होता है कि सत्य को बरगलाना। जैसे मान लीजिए कि एक गुलाब का पौधा है और मैं ये कह रहा हूं कि उसमें कांटे भी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसके निगेटिव साइड को देख रहा हूं, कांटे भी हैं कह रहा हूं मैं, फूल तो है ही, मैं कह रहा हूं कांटे भी हैं, वह भी एक सत्य है। और यदि मैं इस सत्य को जानता हूं कि उसमें कांटे भी होते हैं, तो जब मैं गुलाब का फूल तोड़ूंगा तो संभल कर तोड़ूंगा, कहीं कहीं इस रूप में कि कहीं वो कांटे मुझे चुभ न जाए। तो जो सत्य का जो साक्षात्कार होता है, सत्य का जो ज्ञान होता है, वो हमें सतर्क करता है, किसी बहुत बड़े नुकसान से हमें बचाता है। और सच पूछिए तो जो सत्य को जब हम समझ लेते हैं तो पूरे की पूरी वो जो सिचुएशन होती है, वो जो इवेंट होता है, उस पर हमारी कमांड बन जाती है, वो हमारे कमांड में आ जाती है। तो दोस्तों, अगर निगेटिविटी आपको लग रही है तो आपका सबसे पहला स्टेप यह होना चाहिए कि आप उसमें से सत्य को ढूंढें। आपको ध्यान होगा कि एक स्टूडेंट जिसका 700 समथिंग रैंक जिसकी आई है, प्रांजल नाम शायद उनका है, मैंने अपने डेली ऑडियो में उनकी चर्चा की थी, जो ब्लाइंड है और फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने 700 समथिंग रैंक पाई है। मैंने उनका स्टेटमेंट एक मेंशन किया था, ध्यान होगा, कि अगर आपको कोई इन्फीरियर बता रहा है और आपको लग रहा है कि आप इन्फीरियर है, तो ये आपके लिए मददगार हो सकता है, ये आपको शक्ति प्रदान कर सकता है, क्योंकि तब आप सोचेंगे कि नहीं, वाकई में मैं ठीक है, इन्फीरियर हूं, कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे इससे मुक्त होना है, सामने वाले ने जो मेरे बारे में कहा है मुझे उसे झुठलाना है। तो दोस्तों, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो निगेटिविटी के बजाय ये है कि हाउ यू टेक इट, कि आप उसे लेते कैसे हैं। मैं आपको एक बहुत ही छोटा सा इवेंट बता करके दोस्तों इस पॉइंट को आज यहीं खत्म करूंगा। एक मैंने टीवी चैनल पर एक इंटरव्यू हो रहा था ऋतिक रोशन का, मैंने देखा तो उसमें ऋतिक रोशन एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि एक बार ऋतिक रोशन अपने पिता और परिवार वाले के दूसरे सदस्यों के साथ वो साईं बाबा के मंदिर में गए दर्शन करने के लिए, तो वो लाइन में लगे हुए थे तो पीछे से किसी ने चिल्लाया कि ये टकला ये टकला ये टकला। आपको मालूम होगा कि ऋतिक रोशन के जो पिता हैं रोशन वो गंजे हैं, राइट। तो ऋतिक रोशन ने कहा कि जब उसने टकला टकला कहा तो मेरा खून खौल गया और मुझे लगा कि मैं उस आदमी को पकड़ करके और उसका गला दबा दूं, मेरे इतना गुस्से में मैं भर गया। लेकिन सडन पता नहीं क्या कुछ हुआ कि मेरे मन ने सोचा कि यार क्या वो गलत कह रहा है, मेरे पिता गंजे हैं टकले हैं, तो वो टकले को टकला कह रहा है, तो टकले को अगर टकला वो कह रहा है तो कोई गलत नहीं कह रहा, अगर वो बाल वाले को टकला कहे तब तो कुछ गलत हो सकता है। तो उन्होंने स्पेशली, मैं तो वाक्य बता रहा हूं कि सडन समथिंग हैपन टू मी, कि मुझे कोई अचानक कुछ हुआ और मैं शांत हो गया। शांत क्यों हो गए? क्योंकि उन्होंने उस निगेटिव सेंटेंस में सत्य की खोज की, और जब सत्य की खोज की तो उन्हें लगा कि ये सच ही तो कह रहा है, बात खत्म हो गई, वो निगेटिव निगेटिव नहीं रह गया। तो मित्रों आपको चीजों को इस रूप में भी देखना है। आज के लाइफ मैनेजमेंट के बारे में इतना ही, हम लोग कल भी इसके बारे में बातें करेंगे। और मुझे खुशी है कि मुझे दो तीन सब्जेक्ट्स और भी स्टूडेंट्स के मिले हैं। एक सब्जेक्ट है कि हम अपेक्षा करते हैं, ये कितना सही है कितना गलत है। एक सब्जेक्ट मुझे संवेदनशीलता के बारे में मिला है कि हम कभी बहुत ही ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं, इसको कैसे कंट्रोल करें, कितना सही है कितना गलत है। ये दो टॉपिक मुझे और मिले हैं, और आप लोग जब टॉपिक भेजते रहेंगे तो मैं एक लिस्ट बनाता रहूंगा और फिर उन्हीं लिस्ट के आधार पर हम लोग लाइफ मैनेजमेंट में उनकी बातें करते रहेंगे। फ्रेंड्स अब मैं आता हूं कल के AIR न्यूज पर। देखिए जैसा कि मैंने अभी डेली ऑडियो में कहा है कि इस डेली ऑडियो को आप केवल इस रूप में मत सुनिए कि उस मैंने आपको आज मान लीजिए कि पांच घटनाएं बता दी तो कि आपको पता लग गया कि सिर्फ ये पांच आपकी न्यूज इंपॉर्टेंट थी। आपको ये भी जानना होगा कि जो रिमेनिंग जो 15 जो न्यूज है या 25 जो न्यूज है वो इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है, तब आपकी रियल सेंस में कैपेसिटी बिल्डिंग होगी कि जिन्हें रिजेक्ट किया जा रहा है उन्हें रिजेक्ट क्यों किया जा रहा है। साथ ही आपको यह भी जानना है कि जिसे एक्सेप्ट किया जा रहा है उसे एक्सेप्ट क्यों किया जा रहा है। केवल आप इस रूप में इसे मत लीजिए कि मैंने आपको पांच न्यूज बता दी आज और ये पांच आपको ध्यान में रखना है, फिर आप इन्हें ध्यान में तो रख लेंगे लेकिन रियल जो कैपेसिटी आपकी डेवलप होनी चाहिए वो रियल कैपेसिटी डेवलप नहीं होगी। और दोस्तों ये जो कैपेसिटी है ये सिविल सर्विस की ही कैपेसिटी नहीं है बल्कि आपकी पूरी जिंदगी की कैपेसिटी होगी। मान लीजिए कि आप किसी एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में गए हुए हैं और वहां 6 घंटे की दिन भर की कॉन्फ्रेंस है तो आप में ये कैपेसिटी तो होनी चाहिए ना कि ये 6 घंटे जो बातचीत हुई है इसमें से आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। सबको तो आप ढो करके ला नहीं सकते, सबको याद नहीं रख सकते, तो ये जरूरी है कि आप उसमें अपने लिए जरूरी चीजों को छांटने की क्षमता पाए, वो आपको विकसित करनी होगी। जीवन के सभी क्षेत्रों में ये काम आता है, ये केवल यहीं की बात नहीं है, तो आप इसे थोड़ा सा इस रूप में भी लेने की कोशिश कीजिए। फ्रेंड्स देखिए जो पहली खबर थी, पहली खबर यानी कि मैं जो बता रहा हूं न्यूज में, तो ये दूसरी खबर थी, एक अघोषित संपत्ति के बारे में थी कि आपको मालूम है कि भारत में काले धन की बहुत जोर शोर से अब बातचीत होने लगी है और अब कुछ ऐसा मुझे लग रहा है कि जो अभी की जो सरकार है वो सच में ब्लैक मनी के खिलाफ एक संघर्ष तो छेड़ दिया है, एक युद्ध तो छेड़ दिया है। नो डाउट दोस्तों कि जो क्रोनिक कैपिटलिज्म है या जो ब्लैक मनी जो पिछले इतने साल से चलता आ रहा है, हमारी जो राजनीतिक प्रणाली में फंडिंग का जो सिस्टम है, पॉलिटिकल फंडिंग का जो सिस्टम है जिसमें कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो पैसे वाले लोग हैं राजनीतिक पार्टियों को फंड देते हैं, जो हम क्रोनिक कैपिटलिज्म के तहत देखते हैं, उन सबको देखते हुए आसान नहीं है कि आप काले धन से इतनी जल्दी मुक्ति पाले। कोई ऐसा बटन नहीं है कि उसको आप दबा दें और सब कुछ स्विच ऑफ हो जाए और काला धन खत्म हो जाए, यानी ये बहुत ही डीप रूटेड है इंडियन सिस्टम में, चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम हो, चाहे वो इकोनॉमी सिस्टम हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो, बहुत ही डीप रूटेड है। तो जो इतना डीप रूटेड है, आप देखते हैं कि अगर किसी की जड़ें बहुत गहरी चली गई हो तो आप उन्हें झटके से निकालेंगे तो जड़ टूट जाएगी और आधी जड़ नीचे ही रह जाएगी, आप समूल उसे नहीं उखाड़ सकते। थोड़ा सा उखाड़ेंगे, बाद में वो फिर पनपने लगेगा। तो ऐसी स्थिति में ये थोड़ा सा वक्त तो लेगा, लेकिन ये कम से कम मैं कह सकता हूं कि मेरी व्यक्तिगत राय है कि एक संघर्ष तो छिड़ गया है, वो दिखाई दे रहा है, धीरे धीरे इसके परिणाम सामने आएंगे। तो आपने देखा कि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि फिर से सरकार एक योजना लाने जा रही है। बीच बीच में इस तरह की योजनाएं होती हैं और सिटीजन्स को ये मौका दिया जाता है कि जो अनडिक्लेयर्ड आपकी जो वेल्थ है, जो पैसा है, धन है, उसको आप डिक्लेयर कर दीजिए, उसकी सजा नहीं होगी। जो भी है, अब रूल्स लाएंगे, कभी कभी होता है कि केस चलेगा, कभी होता है कि केस नहीं चलेगा, उसका एक पर्टिकुलर पोर्शन आप टैक्स के रूप में सरकार के पास जमा कर दीजिए और फिर वो आपका पैसा अकाउंटेड मनी हो जाएगा, यानी कि वो ब्लैक मनी ना होकर के वो व्हाइट मनी हो जाएगा। ये एक योजना आने वाली है और मैं समझता हूं कि जो ब्लैक मनी का जो टॉपिक है, शुरू में भी मैं कह चुका हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिविल सर्विसेज के लिए। ये नहीं कि इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है, ये हर साल के लिए इंपॉर्टेंट है। सच पूछे तो इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सच पूछे तो ये एसए के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक पर जब भी कोई बात होती है, जब भी आपको कोई इंफॉर्मेशन या कंटेंट मिलता है, कोई सूचना आपको मिलती है, तो आपको चाहिए कि आप उसे नोट कर दें और इस टॉपिक पर लगातार अपने को अपडेट बनाए रखें, जरा सा भी पिछड़े नहीं। वो करंट अफेयर्स के पैरेलल आपको इस टॉपिक को लेकर चलना होगा। मित्रों, जो दूसरी खबर थी जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है, वो है नस्लवाद के ऊपर। ये मामला एक बार फिर से भारत में उठ रहा है। जो नस्लवाद है, ये खासकर जो अफ्रीकी कुछ स्टूडेंट, एक अफ्रीकी स्टूडेंट्स की जो हत्या की गई दिल्ली में, आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने इस पर चर्चा भी की थी, शुरुआती दौर में ही मैंने चर्चा की थी, इस पर एडिटोरियल कमेंट आने लगे हैं। अब तो इसको एक नस्लवाद मान करके अब बकायदे इस पर आर्टिकल भी लिखे जाने लगे हैं। अफ्रीकी देशों के बीच में तो इसको लेकर के बड़ी हलचल है और 54 देशों का जो उनका संगठन है, भारत से बात भी की है और हमारे विदेश मंत्री, दोनों विदेश मंत्री इसको संभालने में लगे हुए हैं कि किस तरीके से स्थिति को संभाला जाए। आपने देखा कि हमारे यहां तक कि विदेश सचिव भी कल वहां के अफ्रीकन स्टूडेंट्स से मिले, उनके संगठन से उन्होंने बातचीत की है और उन्हें हम आश्वासन दे रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये तो एक इसका प्रशासनिक पक्ष हो गया कि सरकार अपने ढंग से करेगी, लेकिन इसका जो दूसरा पक्ष है मित्रों, मैं समझता हूं कि सिविल सर्विस के लिहाज से वो कम इम्पोर्टेंट नहीं है, वो यह है कि एक जो नस्लवादी चेतना होती है, नस्लवादी चेतना केवल भारत में ही नहीं, वो दुनिया के सभी दूसरे देशों में भी किसी न किसी रूप में मौजूद है। कुछ देश हो सकते हैं कि जहां ये मौजूद न हो। और ये जो नस्लवाद है, ये अलग अलग रूपों में दिखाई देता है, ब्लैक एंड व्हाइट, ये नस्लवाद का सबसे पहला कह लीजिए कि पॉइंट है कि जो गोरे हैं वो अपने को श्रेष्ठ समझते हैं और जो ब्लैक हैं, जो काले रंग के हैं, वो उनको निकृष्ट समझते हैं। बल्कि एक समय में यूरोप जब पूरे देश पर, पूरी दुनिया पर राज्य करने के लिए उपनिवेश बनाने लगा, तो वो एक सिद्धांत लेकर के आए थे इंग्लैंड जैसे देश की, व्हाइट मैन्स बर्डन, मतलब उन्होंने नाम दिया था कि ये ईश्वर ने हमें गोरे लोगों को, व्हाइट मैन्स को ये दायित्व तो सौंपा है कि बर्डन को, ये हम, हमारे ऊपर बोझ दिया गया है, लेकिन हम क्या करें, कर रहे हैं, देखिए एहसान भी जता रहे हैं वो, कि ये जो काले लोग हैं, ये जो असभ्य लोग हैं, असंस्कृत लोग हैं, उज्जड लोग हैं, जो भी आप कह लीजिए, इनको ठीक किया जाए, इनको सुधारा जाए, इनको सभ्य बना जाए। तो इसको उन्होंने नाम दिया व्हाइट मैन्स बर्डन। और याद रखें कि ये अभी भी यूरोप, अमेरिका जैसे देशों में भी ये नस्लवाद इस रूप में मौजूद है। अमेरिका में कभी कभी आपने देखा है कि इस तरह की घटनाएं घटती भी है, वहां के जो पुलिस हैं वो अफ्रीकी, मतलब जो अफ्रीकी तो नहीं कहना चाहिए, इस तरह के जो ब्लैक लोग हैं उनके प्रति थोड़ा सा अलग तरीके के दृष्टि रखते हैं। यहां तक कि रिपोर्ट्स में आई है कि जो जेलों में अगर चले जाएं आपराधिक गतिविधियों में, तो वहां ब्लैक्स लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। अब ये बात अलग है कि ये कितने अपराधी हैं, कितने अपराधी नहीं है, कितने वो हमारे भेदभाव के शिकार होते हैं, वो एक अलग मुद्दा है, वो एक डिस्कशन का मामला है। ठीक इसी तरह से नस्लवाद का आपको एक दूसरा रूप हिटलर में दिखाई देता है कि किस तरीके से हिटलर ने तो उसे सीधे आर्यन ब्लड और यहूदी उसी के आधार पर कि यहूदियों की नस्ल को ही खत्म करना है उसने ठान लिया था और लाखों लोगों को उसने केवल इसलिए मरवा दिया कि ये यहूदी हैं। तो वहां वो जाति को लेकर के भी एक नस्लवाद दिखाई दिया। तो मित्रों, ये जो नस्लवाद की भावना है, ये भारत में ही नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, इसके अलग अलग रूप हैं। और अभी भी आपने देखा कि खासकर जब ये मध्य एशिया के क्षेत्रों में सीरिया यमन इन सब में जब बहुत ज्यादा आतंकवादी गतिविधियां बढ़ने लगी, उन देशों में गृहयुद्ध की स्थिति बनी, तो किस तरह से यहां के लोग निकल निकल करके यूरोपीय देशों की ओर जाने लगे, इटली जर्मनी आपने पढ़ा, फिर वहां भी एक तरीके की शरणार्थी को लेकर के समस्या पैदा होने लगी, वहां भी फिर उनके खिलाफ एक तरीके से लोग खड़े होने लगे। तो इस तरीके से ये अलग अलग रूपों में दुनिया के देशों में दिखाई देता है। तो आपको नस्लवाद पर मुझे लगता है कि एक छोटा सा नोट तैयार कर लेना चाहिए कि बेसिकली ये है क्या, आप दुनिया में किन किन रूपों में ये दिखाई दे रहा है, किस तरीके से ये आगे बढ़ा है, और आज इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, कैसे आप इस नस्लवाद को कंट्रोल करेंगे। क्योंकि ये जो नस्लवाद है ये मान करके चलिए कि डेमोक्रेटिक थ्योरी के भी अगेंस्ट है, और सबसे बड़ी बात है कि ह्यूमन डिग्निटी के अगेंस्ट है, और ह्यूमन डिग्निटी की रक्षा करने वाली जो संस्था है वो आप जानते हैं कि ह्यूमन राइट कमीशन है, वो इंटरनेशनल लेवल पर भी है, तो वो इसे वॉच करती है, वो इसे देखती भी है। तो कम से कम इस आधार पर तो व्यक्ति व्यक्ति में भेद किया नहीं जाना चाहिए, और यही सबसे बड़ी सभ्यता और संस्कृति की निशानी भी है। अगर यही नहीं है तो फिर जो व्यक्ति फिर कैसे सभ्य कहलाने का अधिकारी हो सकता है। तो इसे आप एसे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयार कर सकते हैं, एसे के लिए भी ये जरूर मतलब लगता है कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो सकता है। और वैसे भी जब आप इतिहास पढ़ेंगे, समाजशास्त्र पढ़ेंगे, अगर इन ये आपके ऑप्शनल हैं या आप जनरल स्टडीज में भी पढ़ेंगे तो ये चीजें आपको पढ़ने में आ जाएंगे। मित्रों, जो तीसरी खबर थी वो खासकर कौशल विकास कार्यक्रम को लेकर के थी। आप देख रहे हैं कि कौशल विकास कार्यक्रमों के राज्य में क्या उसे सफलता मिले, इसको लेकर के अभी रिपोर्टिंग्स आने शुरू हो गई हैं। कल झारखंड के लेकर के बात की गई थी, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो कौशल विकास कार्यक्रम है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये भारत का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, और मुझे लगता है कि लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने में इसका बहुत बड़ा रोल होगा। आपको ये भी मालूम है कि यहां तक कि गवर्नमेंट जो मिनिमम वेजेस फिक्स करती है उसमें साफ हो कहती है कि ये अकुशल लेबर है और ये कुशल लेबर है, दक्ष लेबर है। तो जो स्किल्ड लेबर होते हैं उनका मिनिमम वेजेस भी अधिक होते हैं, तो सीधी सी बात है कि वो अर्न ज्यादा करने लगेंगे तो उसका प्रभाव उनके जीवन स्तर पर पड़ेगा ही। और वैसे भी फ्रेंड्स, मान करके चलिए कि एक इकोनॉमिस्ट का एक ऐसा ग्रुप है जो मान कर चलता है कि भारत में जो मिनिमम वेजेस है या जो लोअर लेवल के काम करने वाले लोग हैं उनकी जो वेजेस है, उनके जो वेतन है, उनकी जो आय है, वो वास्तव में बहुत कम है। तो वो वहां पर फिर वो वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका सिद्धांत सामने आ जाता है कि हमारे पास धन तो है, जीडीपी है और प्रति व्यक्ति आय भी हो, लेकिन उसका जब हम डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो उसमें बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को आप तभी संभाल सकते हैं जबकि ठीक कर सकते हैं, कंपेरेटिवली आप वैसे तो बराबर नहीं कर सकते, वो समाजवाद और साम्यवाद केवल किताबों की चीज है, लेकिन कम से कम जो एक लोअर आर्थिक स्थिति वाले जो लोग हैं अगर उनको उनके काम का सही प्रतिदान मिलने लगा तो निश्चित रूप से उसका फिर फर्क उस डिस्ट्रीब्यूशन पर पड़ेगा, उनकी आय पर पड़ेगा। तो उस लिहाज से जो कौशल विकास कार्यक्रम है एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्यक्रम है, तो आप इस पर बकायदे नजर रखें। दोस्तों, फिर राष्ट्रीय हरित अधिकरण के बारे में आपने न्यूज सुनी, अब देख रहे हैं कि जो ग्रीन ट्रिब्यूनल है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के नाम से जो जाना जाता है, और उस पर मैं आज आपको एक एडिटोरियल कमेंट भी प्रोवाइड कर रहा हूं, ये धीरे धीरे बहुत चर्चा में आ रहा है, खासकर जब दिल्ली में ये ऑड नंबर और इवन नंबर की बात आई, जब वायु प्रदूषण की बात आई तब एनजीटी काफी चर्चा में आया, और इस पर एक साल प्रश्न पूछा भी जा चुका है मेन्स में। अब आप देख रहे हैं कि एनजीटी ने फिर से अब कहा है, राज्यों से कहा है कि आप अपने अपने राज्य के जो सबसे प्रदूषित शहर हैं उनकी हमें लिस्ट सौंपिए। आपको यह भी ध्यान होगा कि श्री श्री रविशंकर जी का जब यमुना के किनारे एक विश्व सांस्कृतिक समारोह हो रहा था उसमें भी एनजीटी ने अपना उन पर कुछ जुर्माना लगाया था, हालांकि उन्होंने पहले रोक लगा दी थी और बाद में वो रोक लगाने का अपना वो आदेश वापस ले लिया था, लेकिन एनजीटी ने भी वहां अपना रोल निभाया था। तो इस तरह से ये जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इस पर आपकी तैयारी होनी चाहिए, इसकी स्थापना कब की गई, इसका उद्देश्य क्या है और इसकी भूमिका अभी क्या क्या रही है, और उसमें यह भी आप देखिएगा कि यह कितना इफेक्टिव है, मतलब इसको जो अधिकार दिए गए हैं वो कितने महत्वपूर्ण हैं, है ना। और चूंकि ये ट्रिब्यूनल है तो इसके पास अधिकार हैं, ऐसा नहीं है जैसे मानव अधिकार आयोग वगैरह है, महिला आयोग है, इनके पास उस तरीके के अधिकार नहीं, जुडिशियल पावर्स नहीं है, लेकिन एनजीटी के पास हैं, तो उस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों एक अंतिम खबर यह थी कि जो पब्लिक स्पीक का जो विषय दिया गया था वो किसानों के कल्याण के लिए जो सरकारी योजनाएं थी उस पर पब्लिक स्पीक के अंतर्गत इस पर बातचीत होनी है। और आपको मैं बता चुका हूं कि जो चूंकि किसानों से संबंधित बात है और सरकारी योजनाओं का आपको ब्यौरा उसमें मिलेगा तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम ये है। आपको वैसे भी मालूम होना चाहिए कि सरकार ने किसानों के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं, क्या क्या उनकी इफेक्टिविटी है, वो कितने प्रैक्टिकल हैं, उनमें क्या क्या बाधाएं हैं, और इसको लेकर के कल थोड़ी सी बातचीत मैंने आप लोगों से की भी थी। तो दोस्तों AIR न्यूज में इतना ही है। अब मैं आपको कुछ प्रेस क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं। जैसा कि मैंने कहा कि NGT पर मैं दैनिक भास्कर का आपको एडिटोरियल कमेंट प्रोवाइड कर रहा हूं, इसमें आपको थोड़ी सी जानकारी मिल जाएगी, बहुत अच्छी तो वैसी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल कमेंट है, कट आउट मिडिलमैन, कि किस तरह से सरकार अब ये जो बीच के लोग होते हैं सिस्टम में, इन बीच के लोगों को किनारे करती जा रही है। क्योंकि ये माना जा रहा है कि जितने भी सोशल वेलफेयर के प्रोग्राम होते हैं उसका बहुत बड़ा हिस्सा ये बीच के लोग साइफंड कर देते हैं, यानी कि ये बीच के लोग खा जाते हैं। तो जिनके लिए प्रोग्राम है वहां तक वो चीजें पहुंच ही नहीं पाती। जैसे LPG गैस को ले लीजिए, तो LPG गैस में कितने फालतू के गैस के लोगों ने अपना वो बनवा रखे थे और लोगों को मिल रहा है, और रसोई जो होटल वाले हैं वो भी सब्सिडी वाला गैस ले रहे हैं, तो वहां से सरकार ने उनको अलग किया। मनरेगा वगैरह की मजदूरी जब सीधे सीधे उनके बैंक अकाउंट में जाने लगा तो वहां से फिर मिडिलमैन गायब हुए। बहुत से राज्यों में खासकर जैसे मध्य प्रदेश में अब वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि साहब ये जो ड्राइविंग लाइसेंस है RTO जो बना करके देती है इसमें से मिडिलमैन होंगे ही नहीं, सीधे सीधे आप जाइए और अप्लाई कीजिए, ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, तो वहां से मिडिलमैन गायब हो जाएगा। तो इस तरीके से जो अभी की सरकार है वो मिडिलमैन को खारिज करने की कोशिश में, तो उसको लेकर के बहुत ही अच्छा एक एडिटोरियल कमेंट है, आप इसको जरूर देखिएगा। और दोस्तों दूसरे जो एडिटोरियल जो आर्टिकल्स और कमेंट है वो मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, वो आप लोग देख लीजिएगा। यशवंत सिन्हा जी जो पहले IPS जो IAS ऑफिसर भी रहे और हमारे विदेश मंत्री भी रहे थे, उनका एक बहुत अच्छा लेख दैनिक भास्कर में छपा है, वो खासकर चाबहार बंदरगाह को लेकर, तो इसे आप लोग जरूर पढ़िएगा, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इसे लिखा है, तो आपको समझने में मदद इससे मिलेगी। तो मित्रों न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स के बारे में इतना ही। अब मैं आता हूं अंतिम चरण ईमेल के चरण पर। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी के प्रति बहुत बहुत आभार जिन्होंने मेल लिखे हैं। इनमें से कुछ दोस्तों के नाम हैं, मनीष नंदन, कौशलेश कुमार दुबे चक्रधरपुर, मनीष सिंघल, संगीता ओझा, अरुण कुमार, अर्पणा कुमारी हजारीबाग झारखंड, नेहा मौर्य, इम्तियाज हुसैन आरा बिहार से, इकबाल सुल्तानपुर दोस्त मुरादाबाद से, ललित कोलाम्बे आकाश बागपत से, विपुल कुमार सिंह फैजाबाद से, राजेश शर्मा और साकेत अरोसिया, आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों इसी के साथ ही ये आज का डेली RDO यहीं समाप्त होता है। इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।